نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اور ان پر پڑھ کر سنائیے خبر آدم کے دو بیٹوں کی. آج ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں. تو کہانی کیا ہے, آدم کے دو بچے تھے اور یہ بالکل ابتدائی دور کی کہانی ہے جب ابھی دنیا شروع ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف چیزیں سکھا بھی رہے تھے اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات ڈیولپ ہو رہی تھی. پھر کیا ہوا, اس قرب قربانن, پھر دونوں نے قربانی کی. کیوں قربانی کی, اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز دی جاتی ہیں, جس میں ایک ریزن بنی اسرائیلی روایات سے یہ ملتی ہے کہ دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی اس سے ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب, ہمیں اس سے کوئی لمبی مطلب نہیں ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قربانی کرنا کتنا پرانا عمل ہے نا, یہ اتنے پرانے دور سے. اب ہوا کہ فتقبل من احدیہما, ان دو میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. یہ اب آپ کے سوچنے کا کوئسچن ہے کہ کیسے پتا چلا کہ ایک کی قبول ہوئی ہے تو دوسرے کی نہیں ہوئی, ہے نا سوچنا. کیونکہ جب ہم عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرتے ہیں تو ہمیں تو کبھی نہیں کسی نے آ کے کہا کہ تمہاری قبول ہے تمہاری نہیں ہے. اور ادھر سے ایک اور چھوٹا سا نقطہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کرنے کے بعد اس کی فکر لگ جانی چاہیے کہ کیا میرا وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں, رائٹ. تو ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں, تو کیا آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں, میں نے قرآن پڑھایا, میں نے تراویح پڑھی, تہجد کی, میں نے افطاریاں کرائیں. کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن بھی ہے, بائی دا وے ہینڈ ریز کریں. نہیں ہے تو کہہ دے نہیں ہے, نو پرابلم, سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. ایک دو تین چار پانچ چھ, یعنی کافی لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ہمارے ہو. اور اٹس ٹرو, اصل چیز قابلیت نہیں ہوتی, قبولیت ہوتی ہے. یعنی آپ کس چیز کے کتنے بھی کیپیبل ہو لیکن اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے تو آپ کی کیپیبلٹی رکھی رہے گی. مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں ملتی. تو جاب نہ دینے والے نے کیا کیا کہ اس کی قابلیت کو قبول نہیں کیا, رائٹ. ایگزامپل سمجھ آ گئی کہ بہت سارے لوگ کیوں نہیں جابس لے پاتے, کہ لوگ کہتے سوری وی ڈونٹ نیڈ ٹو. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کیا وہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں, اور قبول ہوں گی تو کیسے, یہ اینڈ پہ بتاؤں گی. یہاں ہم سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس دور میں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی, تو جس اینیمل کو یا کوئی کراپس تھی, کوئی بھی چیز جب لوگ فی سبیل اللہ دیتے تھے نا, تو اس وقت آسمان سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو کھا جاتی. آگ آنے کا اور اس چیز کو کھانے کا مطلب کیا تھا, کہ اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی. لیکن جس کی قربانی کی ہوئی چیز قربان کی ہوئی, آپ آج کے دور میں قربانی کو صدقہ کہہ لیں, ڈونیٹ کی ہوئی چیز پڑی رہتی رلتی رہتی اور کوئی اس کو آ کے نہ لیتا, تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے اس کی قبول نہیں کی. آپ کہیں گے کہ یہ کرائیٹیرین آگے تھا, آج کیوں نہیں ہے, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا آج کیوں نہیں کیا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پہلے اتنے انسان نہیں تھے. آج جب دیکھیں نا قربانی کرتے ہیں تو ہم گوشت کھاتے ہیں, اس کی کھال تک بک جاتی ہے, اس کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, کیونکہ بہت ساری مخلوق ہے دنیا میں. پہلے دور میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کو ایک کرائیٹیرین تو دینا تھا, تو یہ کرائیٹیرین ہوتا تھا. اور دوسری بات ہے کہ اب انسانوں کو بھی ٹرین کیا جا رہا تھا. جب تک انسان کو کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق نہ پتہ چلتا, ہو سکتا ہے وہ آگے سے کرتے نا. اب ہم ایوالو ہو چکے ہیں ماشاء اللہ, اب ہمارے مائنڈ بن چکے ہیں کہ ہمیں دکھے نہ دکھے کہ ہمارا عمل قبول ہے, لیکن یو منون ابل گئی, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیکیاں کر کے پھر اگلی نیکی پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی مسلمان ایسا نہیں سنا ہوگا کہ جو کہ جب تک مجھے پچھلی نماز کا پتہ نہ چلے کہ ڈز اللہ ایکسیپٹ دیٹ اور ناٹ, میں نہیں اگلی پڑھوں گا, کبھی بھی نہیں سوچتے, کیونکہ ہم بڑے ہو گئے. تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا. اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی. کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی, اس کو دیکھتے ہیں. قال لاقتلنک, کہنے لگا البتہ میں تجھے قتل ہی کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, دوسرے نے کہا دیکھو بھائی میرے پر غصہ نہ کرو, میرا قصور نہیں ہے, اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی تقوی والوں کی قبول کرتے ہیں. अब जहाँ पे ये स्टोरी का थीम है, स्टोरी आगे क्या थी थोड़ी सी सुना दूँ, लेकिन हम वापस अपने अमल पे आ जाएंगे कि यहाँ उन्होंने कुर्बानी की। एक ने बहुत ही अच्छी चीज़ कुर्बान की, हाबील और काबील दो नाम आते हैं, आदम के दो डायरेक्ट सन थे। आज हम भी आदम के बच्चे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली आगे से आगे बढ़ते गए। तो जो हाबील था ना, वो बहुत पोलाइट था, सॉफ्ट हार्टेड था और उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी क्रॉप का बेहतरीन हिस्सा लिया, फसल का जो भी अच्छा हिस्सा था उसको फी सबीलिल्लाह सदका दी करा। जो काबिल था बड़ा भाई, वो थोड़ा सा स्टिंजी था, या समझे कि रूड था, या उसके अंदर कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा, कोई भी रीजन होगी, या हो सकता है उसकी कमाई में कोई ऐसी चीज हो कि जिसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो उसने क्या किया, बेकार सी रद्दी सी चीज निकाली और जाके फिर अल्लाह के रास्ते में डाल दी। तो जाहरी बात है वो तो कबूल नहीं होनी थी। हाबील की कुर्बानी अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर ली, काबिल की ना की। अब बजाय इसके कि काबिल ये सोचता कि वेर आई एम रॉन्ग, मेरी गलती क्या है, उसने क्या सोच लिया इस बात पे कि हाँ हाँ ये सारी वजह इसकी जो है ये हाबील है, और उसने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा। सबसे पहला हसद दुनिया में किसने किया, आप लोग बता सकते हैं? शैतान ने आदम, बल्कि शैतान भी ना कहे, इबलीस ने आदम से किया, ठीक है? उसके नतीजे में सजदे का इनकार। लेकिन आप देखिए कि पहला गुना भी हसद हुआ और हसद की बुनियाद पे सजदे का इनकार था, ठीक है? अब ये अगर हम इसी तरतीब को रखें तो ये दूसरी दफा फिर हसद ही का गुनाह हो रहा है दुनिया में, और उसका नतीजा कत्ल तक पहुंच गया। क्या पता चला कि एनवी और जेलेसी और हसद ये बहुत बुरी चीजें हैं, इससे इंसान को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज इससे क्या पता चली कि काबिल ने बिल्कुल वही किया जो शैतान ने किया था। काबिल ने क्या किया, कहा मैं तुझे ही कत्ल कर दूंगा। सेम थिंग इब्लीस ने बजाय इसके के सोचता कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत से क्यों निकलवाया, उसने कहा बस आदम मेरे दुश्मन है, इनकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, राइट? एक लंबी स्टोरी है उनकी। तो क्या पता चला कि जब कभी आपको लगे कि आप किसी चीज में पीछे रह गए दूसरों से, तो क्या करो, अपने ऊपर देखो, लुक एट योर सेल्फ, क्या वजह है, मेरे में ऐसा क्यों नहीं है। दूसरे की तरफ देखेंगे तो नुकसान क्या होगा कि आप अपनी बुराई को दूर नहीं करेंगे। खैर, उसके बाद वो उन्होंने एक ने दूसरे को कत्ल किया। अगली की आयतें आप पढ़िए, और अगर आप चाहें तो इन आयतों की थोड़ी सी तफसीर सुनें तो आपको इसमें बहुत सारे मॉरल्स मिलेंगे कि बनी इसराइल में पहला कत्ल था और वही कत्ल आज तक चलता आ रहा है। यानी बनी इसराइल की रिवायती कत्ल की है उन्होंने, हर दौर में नबियों को भी कत्ल किया, वलियों को भी कत्ल किया और आम लोगों को कत्ल। उनके लिए कत्ल करना ऐसे ही था जैसे सब्जी बेच कर आके शाम को फिर आके बैतुल मकदस में बैठ जाना, ये सारी रिवायत मौजूद है। अब इसमें हुआ क्या कि जब वो मारा गया, फिर उसको पता नहीं था करें क्या डेड बॉडी के साथ, पहला कत्ल था दुनिया में, अब क्या करें, लाश को क्या करूं, जलाऊं। फिर अल्लाह ताला ने एक कवा भेजा, वो दो कवे उसके सामने आपस में लड़े, सेम वही एक्शन हुआ जो कि हाबिल काबिल में हो चुका था। एक ने दूसरे को किया, एक ने उसको मारा। जब वो दूसरा कौवा मर गया तो जो जिंदा कौवा था अब उसने क्या किया, थोड़ी दूर जाके जमीन खोदी और अपने भाई की डेड बॉडी पकड़कर उसमें दफन कर दी। ये मंजर देखकर काबिल को फिर देखिए अपने ऊपर अफसोस हुआ, कहने का मैं तो इस कौवे से इतना भी अकलमंद नहीं हुआ कि अपने भाई की लाश कैसे उसको छुपा दूं। यहां फिर एक नुकता है कि गुनाह पे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, ये नहीं सोचा कि मैं अपने भाई हाबील जैसा क्यों नहीं हुआ कि जिसने मुझे माफ कर दिया और उसने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि ये कहा कि मैं इस क्राइम को खत छुपा क्यों नहीं सका, ठीक है? तो ये सारे मॉरल जो स्टोरी से आपको मिलेंगे, लेकिन यहां जिस पे हम बात करेंगे, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तो कबूल करते हैं मुत्तकियों में से। सवाल पैदा होता है कि कबूलियत का मेयार तकवा है, तो तकवा क्या होता है? पूरा महीना ही मुख्तलिफ जगह पे दरसों में आपने ये आयतें मुख्तलिफ लोगों से सूरह बकरा की आयत नंबर 183 सुनी होगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों, जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो कहे कि तकवा एक बहुत ही अहम चीज है जिसके ऊपर इंसान की बाकी नेकियों का मेयार है। तो तकवा की मौजूदगी में इंसान अमल अच्छे कैसे करता है, आप इसको इस मिसाल से समझिए कि जैसे आप एसी लगाएं और साथ ही सारी विंडोज भी खोल दें, कभी भी वो रूम ठंडा होगा नहीं होगा ना, बल्कि क्या होगा, एसी खराब होगा। सेम थिंग आप हीटर के साथ कर लें, हीट भी खोल दें और उसके बाद -20 और उसके अंदर सारी खिड़कियां भी खोल दें, ना सिर्फ ये कि कमरा गर्म नहीं होगा बल्कि आपका हीटिंग सिस्टम खराब होगा। इसको ले लीजिए, अब यहाँ तीसरी मिसाल इसकी जगह रख लें, नमाज की या रोजे की। हम रोजे की बात करते हैं क्योंकि हम उसी के पास से गुजरे हैं, हम रोजे रखते हैं लेकिन हम इसके बावजूद अपने आप को उन चीजों से नहीं बचाते जो अल्लाह को पसंद नहीं है, नाराज़ करती हैं। तो बिल्कुल यही बात है कि एक तरफ एसी भी खोला हुआ है और विंडोज़ भी खोल दी। आहिस्ता आहिस्ता इसका नुकसान पता क्या होता है, उधर एसी और हीटर ख़राब हुआ था ना, इधर नमाज़ ख़राब हो जाती है। आज नमाज पढ़ने वालों की भी नमाज खराब है, क्योंकि अल्लाह ताला 21वें पारे के शुरू में क्या फरमाते हैं, इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। तो गोया कि जैसे हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है ना, आप कहते हैं कि लेमन खा लें तो इसका ये इफेक्ट है, आप वाटरमेलन खा लें तो इसका ये इफेक्ट है, होता है ना हर चीज़ का इफेक्ट, फिश खा लें तो उसका ये इफेक्ट है, फिश एंड दूध इकट्ठा खा लें पी लें तो नहीं ठीक होता ना, इसी तरह नमाज का एक इफेक्ट होता है, इसी तरह रोजे का भी इफेक्ट होता है। क्या मेरे ऊपर नमाज या रोजे का इफेक्ट आया कि नहीं, ये है कबूलियत की अलामत। अगर रमजान के बाद, यानी अब हम रमजान से अगले डे पे आ गया, सेकंड शवाल है माशाल्लाह, अगर रमजान करने के बाद यानी शवाल में तीन में से एक कैफियत आप अपने अंदर देखें, नंबर एक आप जैसे थे पहले रमजान से वैसे ही हो गए, नंबर एक कैसे से आप इसको थोड़ा सा स्मॉल पिक्चर में कर लीजिए, आपकी नमाजें जैसी रमजान से पहले थी फिर वैसी हो गई, जो आपका लाइफस्टाइल था फिर वही हो गया, टाइम वेस्टिंग थी बट जो भी था जैसे थे वैसे हो गए, वन पॉसिबिलिटी यही है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले से बहुत अच्छे हो गए, आपकी नमाज अब अच्छी हो गई, आपका कुरान से ताल्लुक अच्छा हुआ, आपको देर तक भूखे रहने की आदत पड़ी, आप लघवियात से दूर हो गए और आपको बेकार चीज़ें देखने का शौक नहीं रहा, यानी जो चीज़ें रमजान में छोड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी हैबिट बन गई, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड के अल्लाह ना करे किसी के साथ हो कि पहले से भी बिगड़ गए, पहले तो नमाजें पढ़ते थे अब सोचा कि कोई नहीं ना, रमजान में बहुत सारी नेकियां भी तो कर ली है ना, और वो मुझे लैलतुल कदर की निशानी भी नजर आ गई थी और वो मुझे बत्ती भी दिखी थी और लाइट भी दिखी थी, तो मैंने तो 1000 रातों के बराबर यानी मैंने तो 83 पता नहीं कितने सालों की इबादत कर ली है, तो अब मुझे नमाज की भी जरूरत नहीं। तो दिस इज द वर्स्ट केस। अगर रमजान के बाद हम जैसे थे वैसे ही है तो फिर उसकी मिसाल क्या है कि दवा खाई तो कोई इलाज नहीं हुआ, खाना खाया भूख नहीं मिटी, शावर में गए लेकिन पसीने की स्मेल वैसे ही आती रही, हम इसे को पसंद करते। आप कोई भी काम करें, खाना खाए भूख ही लगी जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, हो ही नहीं रही और उस खाने से कोई एनर्जी नहीं मिल रही तो खतरा। बाज दफा माएं बड़ी परेशान होती हैं, बच्चे का वेट ही नहीं गेन हो रहा, खाता है लेकिन कुछ बनता नहीं है, फिर डॉक्टर चेक करते हैं, कभी कहते हैं इसके स्टमक में प्रॉब्लम है, कभी कुछ कहते हैं ना। इसी तरह हम नमाज पढ़े, ये तो दिन में 5 दफा की बात थी, रोजा तो एक्सट्रीम पे अल्लाह ताला का तकवा लाता है, आपने मगरिब से 1 मिनट पहले भी लोगों को खजूर खाने पर फतवा दे दिया होगा कि तुम्हारा रोजा नहीं हुआ, लोग नहीं खाते, और सिर्फ 1 मिनट के फर्क से हम खाते हैं पीते फिर रुकते ही नहीं, फर्क पड़ता है ना। क्या पता चला कि जब एक काम अल्लाह के लिए करने की इतनी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर इंसान अपने अंदर बेहतरी लाता है। तो रमजान के बाद डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे अंदर बेहतरी आनी चाहिए, हमारी नमाज, हमारा ताल्लुक बिल्ला, लोगों से मामला, सब्र, सब्र कहाँ दिखेगा, लोगों से ताल्लुक में दिखेगा ना। फिर इसी तरह देखिए कि अल्लाह शुक्र, कितना शुक्र हमने सीखा उस वक्त जब खजूर भी खा ली हुई थी, पानी भी पिया और शुक्र सीखा ना, तो मेरी जिंदगी में कितना शुक्र आया। अगर आप अपने आप को पहले से बेहतर देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर गुड डीड्स जो आपने रमजान में किए। तीसरी वह सूरत है वो जिसमें आप पहले से भी खराब हो गए, तो ये तो बहुत खतरे की बात है, इसका मतलब कि आपके अंदर इबादत का तकब्बुर आ गया, प्राइड फील, यू आर फीलिंग प्राइड। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है रमजान आने से पहले नेकियां छोड़ देते हैं, दरसों में आते थे छोड़ दिया, क्लासों में छोड़ दिया, क्या जी वो ईद की रमजान की तैयारियां कर रहे हैं, अच्छा जी अब क्या नमाजें भी छूट रही, जा रहे शॉपिंग ज्यादा होगी तो नमाजें भी कजा होंगी, और इसी तरह रमजान के फौरन बाद फिर इबादत छोड़ देते हैं, मसरूफ हो गए, और वजह क्या है, जहन में यही क्वेश्चन है कि चूंकि आगे हमने बहुत करनी है तो अब नहीं करते, डोंट वरी ऐसी जाया करनी, अल्लाह ने तो माफी कर देनी है गुना, कर लो जितने करने। और इसी तरह रमजान के बाद भी बहुत सफा यही कैफियत होती है। आप देखिए ईद का दिन गुजरा, आप सबका भी वैसे ही गुजरा होगा जैसा हमारा गुजरा, मोस्ट ऑफ द एक सिटी का एक ही स्टाइल होता है, कई लोगों से आप मिले होंगे, कई घरों में गए, ओपन हाउसेज हुए, कितनी किस्म के खाने आपने देखे तो जरूर होंगे, खाया तो वही गया जो खाया गया, लेकिन देख देख के दिल भरा। तो मैं कल सिस्टर से कह रही थी कि स्टमक को तो नहीं पता क्या जीद है, वो तो परेशान हो गया होगा, ये मेरे ऊपर क्या हमले हो रहे हैं, कभी गर्म कभी ठंडा कभी इधर से, और हर तरह से हलवा पूड़ी मिल रहा है और पराठे मिल रहे हैं तो चावल मिल रहे हैं, तो स्टमिक तो बेचारा परेशान होगा। आप इमेजिन कीजिए ना, एक चीज है उसमें आपने बोझ नहीं डाला 8-9 घंटे, वो खुश होगा मजे से, चलो मुझे छुट्टियां, एकदम उसको बगैर अनाउंस किया आपने, उसके ऊपर हलवा डाला पूड़ी डाली और फिर कहते फर्क क्या पड़ता है, कुछ नहीं होता। तो डेफिनेटली अगर उस स्टमक की जुबान होती तो कल वो बोल बोल के कहता मुझे बताओ मेरे साथ हुआ क्या, राइट। लेकिन चेंज एकदम आ गया। अब जब वो खाने का चेंज आया ना, ये बड़ी अहम बात है, रूटीन चेंज हुई ना, रूटीन बदली, इबादत बदल गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज सुबह फजर से बाद जब आए तो मैंने कहा कि मस्जिद में कितने लोग थे ना, तो ये हेड काउंट करने लगे ऐसे जैसे बंदा इमेजिन कर रहे हैं, कहते माइट बी 12-13 पीपल। कैन यू बिलीव, मैंने कहा रमजान में कितने होते थे, ऑलमोस्ट फुल मस्जिद। अब आप मुझे बताइए रमजान में, आप लॉजिक दे सकते हैं, बिकॉज वो पहले से जाग रहे थे सहरी के लिए तो फजर में आ गए, तो जब 30 दिन की प्रैक्टिस ने आपको सुबह फजर के लिए जागना नहीं सिखाया तो आपको उस फजर के सहरियों के क्या फायदा हुआ, क्या आसान नहीं था। अल्लाह ताला 9 to 9 कर देते रोजा, सुबह 9 बजे उठो, अच्छा सा ब्रेकफास्ट लो, डबल एग लो, ये करो और सारा दिन का आज ही खा लो और रात 9 बजे सोने से पहले खा लेना, पॉसिबल था क्यों? बीच रात में अल्लाह ने चुपके चुपके आपको मुझे सहरी खिलाई कि बच्चों से छुप सके, और वो बच्चे भी कहते हैं मुझे पता चल गया आप मुझे छुप के खा रहे थे, वो भी ताड़ते रहते हैं, आप उतरते हैं आपसे पहले वो बिस्तर से उतरे होते हैं, मैं भी रोजा रखूंगा, किधर रखना डब्बे में रखना कहते हैं ना। तो जब रातों को उठा के आपको अल्लाह ने खिलाया और 12-1-2 बजे जब खूब भूख लगी तो कहा नहीं खाना, क्या था? अल्लाह ताला वांट टू चेंज अवर हैबिट्स, हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऑपोजिट चलाया, जैसे वो साइकिल है ना उसका, अगर चेन ऑपोजिट चले तो साइकिल नहीं चलती, पूरा हमारा लाइफस्टाइल ऑपोजिट किया गया। क्यों? ताकि तुम्हें थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना पड़े। तुम देखो तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त है वो खाने पीने में तो नहीं लग रहा। आप और मैं अब अपने लिए लेते हैं, आपको नेकियों का मौका मिला के ना मिला, और नेकी में देखे रोजे सभी रखते हैं, बिलीव मी। मुझे हैरत हुई उस वक्त सुन के, मैं काम भी गई 2-3 दिन पहले, किसी ने कहा कि उनकी कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड है वो भी रोजे रखती है, तो रोजा रखना क्या, लोग डाइटिंग सोच के रख लेंगे, लोग आपके साथ इफ्तारी करने के शौक में रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। असल मसला क्या है कि हम रमजान में इस कुरान के साथ अगर जुड़े तो क्या हमारी रूह अब भूखी होते हैं? आप, मैं पूछना चाहूंगी कि आप में से किन किन सिस्टर्स को दौरे कुरान का मौका मिला सुनने का इस साल, किस किस ने कुरान के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारा? चलिए ये तो मैंने कहा दौरे कुरान, कितने लोगों ने सादा कुरान रोज पढ़ा, एवरी डे दे टुक द कुरान, यानी एवरी डे कुछ ना कुछ खोला। किसने हम में से कल भी सुबह उठ के कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा या किसी भी तरह पढ़ा और आज भी पढ़ा? थोड़े रह गए ना, ये सोच, ये है मसला। देखिए मैंने लोगों को देखा है सफर करते हैं ना, जब एक जगह से दूसरी जगह, कपड़े रखे ना रखे, खाने की कोई चीज रखे ना रखे, अपनी दवाइयां जरूर रखते हैं। एक ऐसे मुझे ब्रदर याद आ गया, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हज के लिए जा रहे थे, बिल्कुल यानी रेडी एयरपोर्ट पे थे, तो जब अंदर गए ना तो चेक इन पे उनकी दवाइयां दिखी, तो डॉक्टर उन्होंने कहा इमिग्रेशन वाले ने कि ये दवाई नहीं जा सकती, सिर्फ इतनी सी बात कि ये दवाइयां उनके साथ नहीं जा सकती, उनको इतनी इनसिक्योरिटी फील हुई कि वहीं उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई और ही गॉट सिक, और उनको फिर वापस भेजा, घर नहीं जा सके, सिर्फ इतनी बात पे कि हाय ये दवाई ना गई तो मेरा क्या होगा। वो दवा पे रहे ना तो क्या हमारा जिस्म इस कुरान की दवा का आदि नहीं हुआ? हाउ कैन आई लिव विदाउट कुरान? याद आपको यहां लेके बैठने का मकसद क्या है? ये हमारी रूह तड़पती है, तो याद रखिए कि बॉडी और सोल ये दो चीजें हैं हम। व्हाट इज ह्यूमन बी? बॉडी प्लस सोल। बॉडी किससे बनी, जिस्म किससे बना? मट्टी से। उसको अच्छा लगता है मट्टी से बनी हुई चीजें, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, खाना पीना, और आप देखिए हमारा सारा फूड मट्टी से आता है किसी एंगल से, खुद ना खाएं तो जानवर खाते उसी से खाते हैं और फिर इसी से आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो जिस्म हमारा इससे ग्रो करता है ना, इसी तरह हमारी सोल ऊपर से आई है और उसकी गजा कुरान है। लोग कहते हैं रूह की गजा मौसीकी है, हालांकि रूह की गजा कुरान है। तो अब हम जिस्म को तो खिलाते रहे और हमारी रूह भी ऐसी रहे तो हेल्दी बॉडी तो नहीं होगी ना, दोनों को साथ लेके चलना। सिर्फ एक दिन नहीं सुना तो अपने आप को खाली खाली महसूस कर रहे थे, और बिलीव में इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, नए फेसेस, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। लेकिन मैं मिस कर रही हूँ कि कब हम वापस अपनी रूटीन पे आएंगे। ये चीज़ें, फॉर अ चेंज इज़ गुड, फंक्शनली इज़ गुड। और सच्ची बात है, हमारी तो आम जिंदगी में भी ये फंक्शन रोज का एक तो होता ही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं दर्स का, कोई इतनी ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बैठ के कुरान सीखते हैं ना, वो बड़ी बात है। तो अब मैं और आप फिर किस चीज़ को दलील बनाएंगे, क्या मेरा रमज़ान में कुरान से जो ताल्लुक जुड़ा था उसको मैं रमज़ान के बाद कंटिन्यू करना चाहती हूँ? कितनी सिस्टर्स हैं आप में से जो चाहती हैं कि अब रमज़ान के बाद स्टिल हम अपना टाइम कुरान के लिए ज़्यादा लगाएं पहले की नस्बत? आपके लिए फ़ायदा होगा तो बता देती हूँ। आप ये देख लें कि ये वो चांस है जो हर एक को हमेशा नहीं मिलता, और ये चांस हमेशा नहीं रहता। और वो क्या है कि आप कुरान को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से ऑन साइट बैठ के पढ़ें। ऑनलाइन माशाल्लाह आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग सुनते हैं सीखते हैं, लेकिन हमारे पास सारी दुनिया से डिफरेंट जगह, जहाँ भी हमारा कोई एक आधा स्टूडेंट होता है, उधर से हमारे पास ये ऑफ़र मौजूद होती है कि आप इधर आएँ और हमें ये क्लास दें। यकीन करें, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको एक दफ़ा करने के बाद इंसान भूल नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए, उर्दू लोगों के लिए ये उर्दू स्पीक, जो उर्दू लैंग्वेज में मोर फ्लेक्सिबल है, और प्लस इसमें वो बच्चियाँ या सिस्टर जो इंग्लिश में हैं लेकिन वो उर्दू सुन समझ सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं उर्दू बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रही है ना, बस ऐसी उर्दू होगी। या आपका पूरा स्टडी पैक, रीडिंग मटीरियल, एग्जाम्स वगैरह कुछ भी आप देंगे वो इंग्लिश में अवेलेबल है। आपका, आपसे जो बात करेगा वो भी इंग्लिश में करेगा। ओनली बस आपके लिए ये जो पीरियड होता है टाइम जिसमें आप तफसीर लेते हैं, तो उर्दू से आपने इंग्लिश में नोट लेने, बल्कि आप तो माशाल्लाह इंग्लिश के नोट्स तक मौजूद है। देर इज टू मच हेल्प। तो आप लोग इस कोर्स को अगर लेना चाहें, और नहीं लेना चाहेंगे तो मैं कहूंगी कि चाहें, पहले चाहें, चाहना आपको पता भी नहीं चलेगा। डेडिकेट फ्यू मंथ्स ऑफ योर लाइफ टू अल्लाह सुब्हानहु तआला। आप इस बुक को सीखेंगे, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। कुरान की तजवीद है, दुआएं, हिफ्स है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, करेक्टर बिल्डिंग है, और सबसे बढ़ के अपने घरों को अच्छा रखना। अगर हम अभी तक ये कोर्स नहीं कर सके तो ये हम सब पे लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स, आप ऐसे भी आ सकते हैं जैसे आ जाए हैं, लेकिन कोई कितनी दफ़ा आता है? आप इन सिस्टर के आज कहने पे आए हैं ना, हम में से कौन आज रोज़ किसी के घर उठ के मुँह उठा के चला जाए? लेकिन जब कोई इनवाइट करता है फिर हम जरूर जाते हैं, ना जाएं तो अगला माइंड करता है। सेम थिंग है, यू कैन कम एज अ गेस्ट, एज अ लिसनर, ऑलवेज वेलकम, नो रूल्स, नो रेगुलेशन, नथिंग, जस्ट आए जब मर्जी चले जाएं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि लोग ऐसे 2-4-10 दफ़ा आ जाएंगे, कुछ तो उसके फॉरम पर रेगुलर हो जाते हैं, पहले पारे में कुछ बहुत सारे लोग लिसनर्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो लिसनर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह दे बिकम रेगुलर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उससे क्या होता है कि हम आपके ग्रुप्स बनाते हैं, आपका सबक सुनते हैं आपको, और बहुत हमारा काम बढ़ जाता है। लेकिन ऑफकोर्स किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट इदारे में इसके बगैर तो काम नहीं होता ना। तो लेकिन यह कि असल में फिर देखा यह है कि वही लोग एंड तक कायम रहते हैं, या वो रेगुलर बन जाते हैं या ना छोड़ देते हैं, क्योंकि नो पेन नो गेन, और वो सोचते हैं अच्छा नोट्स नहीं लिए अब आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमने रमज़ान में अल्लाह ताला से जो ताल्लुक जोड़ा था वो किस दर्जे का था, तो वो हमें इंशाल्लाह इस ताल्लुक के साथ होगा। तो मैं किस किस का इंतज़ार करूँ, कौन कौन आएगा? जो सिस्टर्स नहीं हाथ खड़े कर रहे, क्या उनकी कोई कमिटमेंट है पहले से? इंशाल्लाह जो भी आएंगे उनके लिए अच्छा होगा, जो नहीं आ सकेंगे तो एनी टाइम आ सकते हैं। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन चांसेस को जो है वो वाकई अपॉर्चुनिटीज़ बना दें, और ऐसा ना हो कि हम इनको पीछे रह जाएं और वक्त गुजर जाए। जज़ाकअल्लाह खैर, बस इतना काफ़ी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आइए छोटी सी दुआ करके अपने क्लोज करते हैं ताकि हम अपनी दूसरी चीज़ों को ले सकें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। اللهم انت جل القرآن العظيم ربي قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب غمي وهمي. یا اللہ سجا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، اور یا اللہ سب لوگ جس بھی مشکل میں، پریشانی میں، بیماری اور تکلیف میں اسے نکال دے، اور یا اللہ ہمیں زندگی کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے، کل جب تیرے پاس جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹرز، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔